9 पद्मावत कुछ महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को मसनवी शैली में लिखे प्रबंध काव्य की संज्ञा दी है। उनके अनुसार प्रबंधकार कवि की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण लोक जीवन से उसकी अभिन्नता होती है। लोक जीवन के विविध तेवरों से उसके बहुआयामी प्रसार से जो रचनाकार जितना अधिक और जितनी गहराई से परिचित होगा उसकी प्रबंध रचना उतने ही निखरे रूप में सामने आएगी। गोस्वामी तुलसीदास की प्रबंधकार कवि के रूप में अद्भुत सफलता के मूल में लोक जीवन और लोक संस्कृति की उनकी विशद और गहरी पहचान है। सूरदास प्रबंध रचनाकार नहीं है, परंतु अपने काव्य में लोक जीवन से अपने गहन और प्रगाढ़ परिचय का अकाट्य साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत किया है। भक्ति काल के तीसरे महत्वपूर्ण कवि के रूप में शुक्ल जी ने मलिक मोहम्मद जायसी की पहचान की है। जायसी के सहृदयता पर शुक्ल जी मुग्ध हैं। जायसी ग्रंथावली की भूमिका में उन्होंने जायसी के मनुष्य और रचनाकार दोनों पर अपनी विस्तृत टिप्पणियां दी हैं। अपने पिछले निबंध में हमने जायसी और पद्मावत के महत्व के कुछ विशिष्ट बुनियादी बिंदुओं को उभारने की चेष्टा की है। इन बुनियादी बिंदुओं में एक बिंदु पद्मावत का लोक पक्ष है। लोक जीवन और लोक संस्कृति का जितना भरा पूरा विशद और गंभीर चित्रण जायसी पद्मावत में कर सके हैं वह लोक जीवन के उनके विशद ज्ञान के बिना संभव ही नहीं था। यदि केवल लोक तत्व को ही ध्यान में रखा जाए तो महज उसके चित्रण के बल पर पद्मावत मध्यकाल का एक अनुपम काव्य ठहरेगा। अगली पंक्तियों में हम पद्मावत के इसी लोकतात्विक पहलू को कुछ विशद करके प्रस्तुत करना चाहेंगे। एक, लोक जीवन और लोक संस्कृत। जायसी एक सूफी साधक, ईश्वर भक्त, कवि, प्रेमाख्यानकार जो भी हो, उनकी रचना के भीतर से उनकी जो बुनियादी छवि उभरती है वह गवई गांव के मन और संस्कारों वाले एक निहायत साधारण सरल पारदर्शी अंतःकरण वाले एक निश्चल और सहृदय मनुष्य की ही छवि है। एक ऐसा मनुष्य और एक ऐसा मानस जो साधारण जन से साधारण जनमानस से तदाकार हो, वर्ग वर्ण नस्ल और संप्रदायगत भेदों से ऊपर मनुष्यता को तरजीह देने वाला इंसान हो, उनकी यह छवि एक सच्चे सूफी साधक के रूप में उनकी पहचान से मेल खाती है। अपने सूफियाना घुमक्कड़पन के नाते ही वे जनमन से परिचित हो सके, अपनी जमीन और अपनी मिट्टी तथा अंचल से एक तान हो सके। जिस तरह तुलसी की बहुत बड़ी विशेषता लोकमन की उनकी पहचान है, उसी तरह जायसी भी लोकमन के सहज पारखी और उससे एक थे। उनकी अपनी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या दुनियावी जो भी सोच उनकी रचना में प्रतिबिंबित हुई हो वह पिछड़ी हुई है। युगबद्ध सामाजिक सोच भले ही मानी जाए वह साधारण जन की सोच ही है। साधारण जन मानस ही उनके मानस में प्रतिबिंबित हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास की तरह इस साधारण जन को उसकी बोली बानी आधार व्यवहार हर्ष उल्लास और उसके सारे दुखता और ताप त्रास के साथ उन्होंने बहुत नजदीक से देखा और सुना था। किन स्थितियों में उसकी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं या हो सकती हैं इसे वे बखूबी जानते समझते थे। यही कारण है कि पद्मावत के ढेरों प्रसंगों में उसके विविध चरित्रों संदर्भ में वे भले ही शहंशाह, राजा, रानी अथवा सामंत सरदार क्यों न हों, उनके अपने हर्ष उल्लास और ताप त्रास में जायसी ने उन्हें जिस तरह देखा और दिखाया है वे साधारण जन के रूप में ही सामने आए हैं, शहंशाह, राजा या सामंत सरदारों के रूप में नहीं। इनकी इन प्रतिक्रियाओं के चलते उनकी अपनी बुनियादी छवि भले ही अविश्वसनीय मानी जाए परंतु पाठक का उनकी जायसी द्वारा प्रस्तुत छवि से सहज तादाद में हो जाता है। उन्हें साधारण पाठक बिल्कुल अपने करीब पाता है। इस स्थिति का एक और भी पहलू हो सकता है। आदमी भले ही छोटा बड़ा राजा रंक क्यों न हो, उसके अपने सुख दुख छोटे बड़े नहीं होते। हर्ष उल्लास और ताप त्रास के क्षणों में अनुभूति अपने प्रकृत रूप में ही सामने आती है, राजा या रंक की अनुभूत बनकर नहीं। फिर साधारण जन के बीच जीने वाले जायसी को अनुभव भी साधारण जन का ही था। वे केशव की तरह दरबारी तामझाम के कवि नहीं थे जो राजाओं के तौर तरीकों को जानने पहचानने में माहिर हो, जो भी हो जैसा हमने कहा, जायसी के जीवन संघर्ष के हर्ष उल्लास और ताप त्रास के क्षणों को जिन तेवरों में प्रस्तुत किया है वे मनुष्य मात्र के सहज तेवर सहज रिस्पांस ही हैं। साधारण जन के अपने अनुभव और अपने संवेदन हैं। उनका संबंध रचना में भले ही किसी विशिष्ट पात्र से क्यों न हो, उनके रचनात्मक व्यवहार और प्रस्तुत में लोक का मन ही प्रतिबिंबित हुआ है। आचार्य शुक्ल तथा अन्य इसी पर रिझे भी हैं। जायसी पर अपने पहले निबंध में हम नागमती के वियोग की बात कर चुके हैं, जिसके बारे में शुक्ल जी ने मुग्ध होते हुए कहा है कि नागमती अपना सारा रानीपन भूलकर साधारण स्त्रियों की तरह अपने दुख का निवेदन करती है। साधारण नारी की तरह का उसका यह वियोग जन्य व्यवहार पाठकों को इसी नाते विश्वसनीय और मार्मिक लगता है कि पाठक के अपने मन से उसका सहज तादात्म्य हो जाता है। इसी तरह का एक प्रसंग बादल के युद्ध में जाने का प्रसंग है, जिसकी माँ उसे रोकती है उसकी अल्पावस्था के नाते, और इस नाते कि उसी दिन उसका गौना हुआ था। बादल की माँ और उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया को भी अपने पिछले निबंध में हमने उद्धृत किया है। इसी तरह का एक उदाहरण वह है जहाँ नागमती और पद्मावती दोनों अपने पति रत्नसेन के शव के साथ सती होने के लिए चिता पर बैठती हैं। हम पिछले निबंध में इसे भी उद्धृत कर चुके हैं। एक अन्य उदाहरण देकर हम इस प्रकरण को समाप्त करना चाहेंगे, जहाँ रत्नसेन की वृद्धा माँ का आर्द्र निवेदन एक पक्षी रत्नसेन तक पहुँचाता है, जो सिंगल द्वीप में पद्मावती के संयोग सुख में डूबा था। यह व्यथा भी एक साधारण माँ की ही है, किसी राजमाता की नहीं। लोक जीवन और लोक व्यवहार में अपनी दखल और अपने गहरे अनुभवों के नाते जायसी किसी भाव के मर्म तक पहुंच जाते हैं और उसे साधारण जन के अपने मानस के प्रतिबिंब के रूप में पेश करते हैं। लोक जीवन का ऐसा पारखी और ऐसा मर्मी रचनाकार ही लोक का प्यारा हो सकता है, जैसे कि जायसी हैं। वे लोक से इतना एक मन है कि लोक उनकी वाणी में बोलता है, लोक के अनुभव संवेदन उनकी लेखनी से गुंथे हुए चले जाते हैं। रत्नसेन की माँ का यह व्यथा निवेदन देखिए, जो पक्षी के जरिए जायसी ने रत्नसेन तक पहुँचाया है। रतनसेन की माई सुरसती गोपी चंद्र जस मैनावती आंधरी बूढ़ी होई दुखरोवा जीवन रतन कहाँ दह खोवा जीवन अहा लीन सो काढ़ी भई बिनु टेक करे को कठाढ़ी बिनु जीवन भई आस पराई कहाँ सो पूत खम्भ होई आई नैन दीठ नहीं दिया बराही घर अंधियार पूत जो नाही जो को जो चले सरवन के ठाऊ टेक देह और टेक कै पाऊं तू सपूत माता कर अस परदेश न ले अब ताई मुई होई ही मुए जाई गति दे। लोक जीवन का एक विशिष्ट पहलू लोक की अपनी संस्कृत होती है, जिसमें लोक का व्यवहार उसके मूर्त आचार मूर्त होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार और उनसे जुड़ा लोक मन का हर्ष उल्लास और दुख दाह उसका अंग है। अपने इस प्रबंध काव्य में जायसी ने इसे विशद रूप में आका और हमारे अपने अनुभव का विषय बनाया है। जन्म नामकरण लग्न विवाह सुहागरात भोजन जीवनार आदि तथा मृत्यु तक के सारे विधान पद्मावत में हैं। अपने पूरे व्यवरों के साथ अवध प्रदेश के सारे व्यंजन वहाँ वर्णित हैं। लोक मन में रूढ़िबद्ध तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा शकुन अपशकुन मुहूर्त विचार सबकी चर्चा वहाँ है। दान पुण्य देशाटन तीर्थाटन आदि का उल्लेख प्रसंग के अनुरूप है। अंध आस्थाएं और अंध विश्वास जो लोक मन में गहरे विद्यमान हैं, उनकी भी चर्चा है। कहने का मतलब यह है कि लोक जीवन के सकारात्मक नकारात्मक कोई भी पहलू जायसी की निगाह से छूटे नहीं है। उनके जरिए जायसी ने अवध के लोक जीवन का यथार्थ हमारे सामने रखा है। पर्व त्योहार और उत्सव में वो बसंत पंचमी होली और दिवाली की विशद चर्चा है। समूह नृत्य और समूह गान भी है। ये सब मिलजुल कर अवध की अपनी लोक संस्कृत को भरे पूरेपन के साथ उजागर करते हैं। दो, लोक जीवन में प्रकृति। लोक जीवन का एक अन्य विशिष्ट पहलू लोक की प्रकृति का अंकन है। आचार्य शुक्ल ने इसे नरेतर वाह्य प्रकृति कहा है। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे पशु पक्षी नदी नाले जंगल पठार सब आते हैं। जिनसे लोक सुंदर और लोक जीवन गर्शील और समृद्ध होता है। जायसी के गवई गांव के संस्कार और उनका गवई मन लोक की इन प्राकृतिक विभूतियों में रमा रचा है। अपने अंचल की प्रकृति से वे पूरे मन से परिचित हैं और उसके एक एक रग रेशे को वे पूरी तन्मयता में उभारते हैं। आचार्य शुक्ल ने प्रकृति के प्रति सच्चे प्रेम को देश प्रेम के रूप में परिभाषित किया है। धरती और देश प्रेम से आखिर है क्या? धरती और देश के रग रेशे से परिचय और एकात्म। परिचय को वे प्रेम की सीढ़ी मानते हैं और पूछते हैं, भाइयों बिना परिचय के प्रेम कैसा? वे लिखते हैं, जो नहीं जानते कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता है, जो आंख भर यह नहीं देखते कि आम प्रणय सौरभ पूर्ण मंजरियों से कैसे लदे हैं, जो यह भी नहीं जानते कि किसानों की झोपड़ियों के भीतर क्या हो रहा है, यदि वे 10 बने थने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का पता लगाकर देश प्रेम का दावा करें, तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों बिना परिचय यह प्रेम कैसा? जिनके सुख दुख के तुम कभी साथी न हुए, उन्हें तुम सुखी देखना चाहते हो तो यह समझते नहीं बनता। उनसे कोसों दूर बैठे बैठे, पड़े पड़े या खड़े खड़े तुम विलायती बोली से अर्थशास्त्र की दुहाई दिया करो, पर प्रेम का नाम साथ मत घसीटो। प्रेम हिसाब किताब की बात नहीं है। हिसाब किताब करने वाले भाड़े पर मिल सकते हैं, प्रेम करने वाले नहीं। इस बिंदु पर कालिदास के विशुद्ध विरह काव्य को शुक्ल जी ने एक नए कोण से देखते हुए उसमें कालिदास के सरस हृदय का उदात्त देश प्रेम के दर्शन किए हैं। वे लिखते हैं, पूर्व मेघ तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृति की ही एक मनोहर झांकी या भारत भूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है, जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भूलकर कभी कभी मग्न हुआ करता है। वह घूम घूम कर वक्तव्य दे या न दे, चंदा इकट्ठा करे या न करे, देशवासियों की आमदनी का औसत निकाले या न निकाले, सच्चा देश प्रेमी है। मेघदूत कल्पना की क्रीड़ा है, न कल्पना की क्रीड़ा है, न कला की विचित्रता। वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी प्रेम दृष्टि। इसी बिंदु पर जायसी भी उतने ही भावुक और उतने ही सहृदय ठहरते हैं जितने कालिदास या इस तरह के अन्य रचनाकार। जायसी घुमंतु भी थे और बहुज्य भी। आचार्य शुक्ल ने उनकी बहुज्यता की चर्चा भी की है। अपनी धरती तथा प्रकृति की जिन वस्तुओं से उनका साक्षात परिचय नहीं भी था, उन्हें भी अपनी जानकारी के आधार पर उन्होंने जुटाया है। प्रकृति उनके यहाँ केवल अलंकार बनकर या मानवीय भावों की उद्दीपन बनकर ही नहीं आई है, जैसा कि नागमती के वियोग वर्णन खास तौर से 12 मासे में है। प्रकृति पर और उनके नाना उपकरणों पर उनका बेहद अनुराग भी था और उन्होंने उनका स्वतंत्र रूप से चित्रण किया है। ज्यादातर प्रकृति उनकी अपनी जानकारी और अपने अनुभवों के तहत ही आई है। वे उसके चित्रण में पूरी तरह से तल्लीन हुए हैं। लोक जीवन की इस पूंजी का उन्होंने बहुत ही कुशलता से अपनी रचना में विनियोग किया है। सिंघल द्वीप के वर्णन के कुछ अंश देखें। फरे आम्ब अति सघन सुहाए, जव असफरे अधिक सिर नाए, कटहर डार पिंड सन पाके, बड़हर सो अनूप अकिताके, खिरनी पाकी खांड असमीठी, जामुन पाकी भंवर अति दीठी। पुनि महुआ चो अधिक मिठासु, मधु जसमीन पुहुप जसबासु, फरे तूत कमरख ओ न्योजी, राय करौंदा बेर चिरौंजी, आदि आदि। आगे इसी तरह पुष्पों की भिन्न भिन्न किस्मों, पक्षियों की न जाने कितनी प्रजातियों, ताल तलैया कुओं बावड़ियों के वर्णन हैं। प्रकृति का भरपूर उपयोग जायसी ने भाव व्यंजना में किया है। नागमती का वियोग वर्णन इसका उदाहरण है। इसी के अंतर्गत उनका प्रसिद्ध 12 मासा है, जिसमें गवई प्रकृति अपने सारे रूपों के साथ उजागर हुई है। यह 12 मासा पद्मावत में नागमती के वियोग के अंतर्गत सबसे प्रभावशाली और जायसी की कवि दृष्टि उनके बारीक निरीक्षण का प्रमाण है। वैशाख का महीना सरोवर का जल दिन प्रतिदिन घट रहा है। अब तो स्थिति यह है कि हृदय में दरारें पड़ गई हैं। प्रिय तुम आओ और अपनी दृष्टि रूपी दवंगरे से हृदय की इन दरारों को भरो। दवंगरा वर्षा ऋतु में पहले आने वाले पानी के झोंके को कहते हैं। सरोवर हिया घटत नित जाई, टूक टूक होइक बिहराई, बिहरत हिया करह पीते का, दीठ दवंगरा मेरवहु एका। नागमती वियोग दुख में बावली और उन्मादी हो उठी है। भय पुछार लेन बनवासु, बैरिन सवति देन चिलवासु, होई खर बान बिरह तनु लागा, जो पियो आव उड़ही तो कागा। हारल भय पंथ मय सेवा, अब तह पठवऊ कौन परेवा, धौरी पंडुक कहु पिए नाहूं, जव चित रोख न दूसरे ठाऊं। जाहि बया होई प्यू कंठ लावा, करे मेराव सोई गौरवा। कोइल भय पुकारति रही, महरि पुकारे ले ले दही, पेड़ तिलोरी औजल हंसा, हृदय पैठ बिरह कटनंसा। कुहुक जस कोयल रोई, रकत आंसु घुंघची बन बोई, भय कल मुखी नयन तन राती, कोसे राव बिरहा दुखताती। जह जह ठाढ़ी होई बनवासी, तह तह होई घुंघुची कै राशी, बूंद बूंद मह जानहु जीव, गुंजे गुंजा गुंज करे पिउ पिउ। तेहि दुख भये परास निपाते, लोहू बूढ़ी उठे हुई राते, राते बिंब भीज तेहि लोहू, परवर पाक फाट हिय गोहू। देखो जहाँ होई सोई राता, जहाँ सो रतन करे सो बाता। नहीं पावस उही देसरा, नहीं हेमंत बसंत, ना को किल न पपीहरा, जही सुनी आवे कंत। दृष्टव्य है कि जायसी के यहाँ गवई प्रकृति की प्रधानता है, उसी के कार्य व्यापारों का अंकन है। आकाशीय प्रकृति की छटाएं भी उनके यहाँ हैं, परंतु गवई दृष्टि से देखी हुई। प्रकृति के कोमल रौद्र सुंदर भव्य और दाहक सभी प्रकार के चित्र उनके यहाँ हैं। बारह मासे के वर्णन में प्रकृति नागमती के वियोग भाव की संगत में है, तो रतन सेन और पद्मावती के विवाह के अवसर पर संयोगावस्था में वह उनके सुखद संवेदनों के साथ है। षट ऋतु वर्णन के रूप में सारा काव्य प्रकृति के नाना रूप व्यापारों से भरा हुआ है। प्रकृति के नाना रूपों और व्यापारों का इतना मुग्ध दर्शक, उनकी बारीक पहचान रखने वाला जितने की जायसी हैं, भक्ति काल में तुलसी और सूर के अलावा और कोई नहीं हुआ। तीन, अन्योक्ति और समासोक्ति। जायसी सूफी संत से यह बात सर्वविदित है, सूफियों में ईश्वर की भावना प्रियतम के रूप में करने का रिवाज है। पद्मावत के अंत में ये जो पंक्तियां आती हैं, उनके आधार पर अनेक विद्वानों ने पद्मावत को अन्योक्ति सिद्ध करने की चेष्टा की है। पंक्तियां हैं, मैं यही अर्थ पंडितन बूझा, कहा कि हम किद और न सूझा, चौदह भुवन जुतर उपराही, ते सब मानुष के घट माही। तन चितौर मन राजा कीन्हा, हे सिंगल बुद्धि पद मिन चीन्हा। गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचत सोई न यही चित बंधा, राघव दूत सोह सैतानु, माया आला दीन सुल्तानु। प्रेम कथा यही भांति विचार हूँ, बूझ ले हूँ जो बूझे पा रहा हूँ। इन पंक्तियों में जायसी ने व्यंग्य अर्थ को ही प्रधान या प्रस्तुत मानते हुए इस काव्य के अन्योक्ति माने जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल को यह मत मान्य नहीं है। उनका तर्क है कि यदि कवि स्पष्टीकरण के अनुसार व्यंग्य अर्थ को ही प्रधान या प्रस्तुत माने, तो जहाँ जहाँ दूसरे अर्थ में निकलते हैं वहाँ वहाँ अन्योक्ति माननी पड़ेगी। पर ऐसे स्थल अधिकतर कथा के अंग हैं और पढ़ते समय कथा के अप्रस्तुत होने की धारणा किसी पाठक को नहीं हो सकती। अतः इन स्थलों के वाच्यार्थ को अप्रस्तुत नहीं कह सकते। इस प्रकार वाच्यार्थ के प्रस्तुत और व्यंग्यार्थ के अप्रस्तुत होने से ऐसी जगह सर्वत्र समासोक्ति ही माननी चाहिए। जाहिर है कि आचार्य शुक्ल पद्मावत को समासोक्ति काव्य मानने के पक्ष में हैं। जायसी के संकेतानुसार अन्योक्ति काव्य नहीं। एक दूसरी दिक्कत भी है जिसे सूफी काव्यों और जायसी के मर्मा के पंडित राम पूजन तिवारी ने स्पष्ट किया है। तिवारी जी के अनुसार वैज्ञानिक प्रणाली से जिन अध्येताओं ने पद्मावत का पाठ निर्धारण किया है वे उपर्युक्त पंक्तियों को प्रक्षिप्त मानते हैं। इन पंक्तियों को वे जायसी लिखित नहीं मानते। उनके अनुसार यदि मान भी लिया जाए कि ये पंक्तियां जायसी की है और पद्मावत की कथा को समझने की कुंजी है, तब भी बात नहीं बनती। उनका सबसे पहला तर्क है कि सूफियों में साधना की सफलता के लिए अहं का विनाश अनिवार्य माना गया है। जब तक अपने अहं को विनष्ट कर साधक परम प्रीतम के प्रेम में विशुद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस दृष्टि से पद्मावत में बहुत सी असंगतियां हैं। उद्धृत पंक्तियों में राजा को मन तथा पद्मावती को बुद्धि बताया गया है। तिवारी जी के अनुसार अगर इस प्रतीक को स्वीकार करें तो कई स्थलों की संगत कैसे बिठा सकते हैं जहां पद्मावती के मुंह से राजा रत्नसेन का परम तत्व के रूप में वर्णन कराया गया है। वैसे पद्मावत में पूर्वार्ध से पद्मावती परम सत्ता या परम सौंदर्य के प्रतीक के रूप में सामने लाई गई है और रत्नसेन को साधक बताया गया है। अगर इस प्रतीकत्व को माने तो कठिनाई यहाँ और भी बढ़ जाती है। नागमती दुनिया का धंधा बताई गई है। अब अगर नागमती वस्तुतः दुनिया धंधा है तो परम सत्ता या परम सौंदर्य की प्रतीक पद्मावती को पाकर रत्नसेन साधक फिर दुनिया धंधा या नागमती के पास क्यों लौट आता है? यही नहीं, वह पद्मावती और नागमती दोनों में मेल मिलाप कराकर दोनों के साथ रहने लगता है। बड़ी असंगतियां हैं पद्मावत के इस रूपक में। कथा के दूसरे तमाम पात्रों को भी फिर हमें कुछ न कुछ मानना पड़ेगा जो संभव नहीं है। यही नहीं, अंत में रत्नसेन के साथ नागमती पद्मावती दोनों के सती होने को क्या कहा जाएगा? आचार्य शुक्ल ने सही कहा है कि पद्मावत के सारे वाक्यों के दोहरे अर्थ नहीं हैं। सर्वत्र अन्य पक्ष के व्यवहार का आरोप नहीं है, केवल बीच बीच में कहीं कहीं दूसरे अर्थ की व्यंजना होती है। समग्रतः पद्मावत को समासोक्ति मानना ही उचित है। अन्योक्ति वहाँ होती है जहाँ अप्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यंजना होती है, परंतु जहाँ वाच्यार्थ प्रस्तुत और व्यंग्यार्थ अप्रस्तुत हो वहाँ समासोक्ति ही होगी। चार, प्रेमाख्यानकों की परंपरा में पद्मावत। सूफी प्रेमाख्यानकों में पद्मावत के वैशिष्ट की चर्चा करने के पहले यह बता देना जरूरी होगा कि प्रेमाख्यान कोई सूफी परंपरा या फारसी की चीज नहीं है। उनकी बड़ी प्राचीन भारतीय परंपरा है। यह परंपरा वेदों में भी है, जहां उर्वशी पुरुरवा का प्रेम वृत्तांत है। वेदों के अलावा बौद्ध ग्रंथों में भी इस परंपरा के सूत्र मिलते हैं। अपभ्रंश के काव्यों में तो ये प्रेमाख्यान ऐसी तमाम बातों को लेकर सामने आते हैं जो बाद में सूफी प्रेमाख्यानकों में दिखाई पड़ती है। पद्मावत के बाद भी प्रेमाख्यानकों की यह परंपरा विकास करती रही है। शोधकों ने संस्कृत से लेकर अपभ्रंश तथा फारसी तथा हिंदी अवधि में लिखी प्रेम गाथाओं के अलावा पंजाबी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में भी इन प्रेम कथाओं को पाया और उनके महत्व को उजागर किया है। बहरहाल हमारा प्रतिपाद यहाँ पद्मावत है, अतः हम उसे केंद्र में रखकर कुछ जरूरी बातें करना चाहेंगे। पद्मावत क्या जायसी में भी जन्म काल को लेकर काफी मतभेद है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने जायसी का जन्म काल 900 हिजरी माना है, जबकि राम पूजन तिवारी इसे 870 हिजरी मानते हैं। इस हिसाब से जब जायसी ने पद्मावत को समाप्त किया होगा उनकी अवस्था 77 वर्ष की होगी। पद्मावत की रचना राम पूजन तिवारी 927 हिजरी मानते हैं। उनके अनुसार पद्मावत के शाही वक्त शेरशाह की जो प्रशस्ति प्रारंभ में है वह उसमें बाद की जोड़ी गई होगी। ये बातें महज प्रासंगिक हैं। जिस बात को जायसी ने पद्मावत में लिखा है वह यह कि उनके पहले की शैली की कुछ प्रेम कहानियां विद्यमान थी। उन्होंने खास तौर से अपने पहले की चार ऐसे प्रेम गाथाओं का जिक्र किया है जो उस शैली में जिसमें पद्मावत की रचना हुई है। विक्रमादित्य और उषा अनिरुद्ध की कथा शैली भिन्न प्रकार की है। जायसी के अनुसार ये प्रेम गाथाएं निम्नलिखित हैं। विक्रम धनसा प्रेम के बारा सपनावती कह गयो पतारा मधुपाच मुग्धावती लागी गगन पूर होइगा बैरागी राजकुवर कंचनपुर गयऊ मिर्गावती कह जोगी भयऊ साधु कुंवर खंडावत जोगु मधुमालती कर किन्ह वियोगु प्रेमावती कह सुर सरी साधा उषा लग अनिरुद्ध कर बाधा। इनमें शुक्ल जी के अनुसार मधुमालती तथा मृगावती की प्रेम गाथाओं की पांडुलिपियां तो मिली हैं, शेष मुग्धावती तथा प्रेमावती का पता अभी तक नहीं चला है। इनके अलावा कुछ और प्रेम गाथाएं भी अवधि में दोहा चौपाई छंदों में मिलती हैं। उदाहरण के लिए उस्मान या मानकृत चित्रावली तथा नूर मोहम्मद कृत इंद्रावत। मधुमालती के प्रेम गाथाकार मंजन हैं, जबकि मृगावती के कुतपन। जैसा कहा गया है ये प्रेम कथाएं अवधि भाषा से दोहा चौपाई छंद में हैं और मसनवी शैली में हैं। जायसी रचित पद्मावत के अलावा रत्नसेन पद्मावती प्रेम प्रसंग पर जायसी के उपरांत आगे भी लिखा जाता रहा है। ऐसी रचनाओं में हंस कवि रचित रतन कहानी 1592 ईस्वी, लब्धोदय कृत पद्मिनी चरित्र चौपाई 1650 ईस्वी, गुलाम अली कृत पद्मावत 1680 ईस्वी, गुरु गोविंद सिंह कृत रत्नसेन पद्मावती 1696 ईस्वी, ईशरती कृत दीपक पतंग तथा वली वेल्लेरी कृत रतन व पद्म है। इन रचनाओं की शैली अलग अलग हैं, परंतु सब में रत्नसेन पद्मावती का लोक प्रचलित किस्सा ही है। यह तथ्य इस कथा की लोकप्रियता की ओर संकेत करता है। जाहिर है कि हर दृश्य से इनमें जायसी का पद्मावत अनुपम है। उसमें काव्यात्मकता तो है ही, उसका परिप्रेक्ष्य भी अपेक्षाकृत व्यापक है। जैसा कि विद्वानों ने बताया है, पद्मावत की लोकप्रियता के नाते ही उसके कई अनुवाद हुए और श्री श्रीदेव ने तो उसका अनुवाद अंग्रेजी में भी किया। इसके अलावा उसके फारसी तथा बंगला में भी अनुवाद हुए। इस प्रकार पद्मावत एक लोकप्रिय कथा पर रचित प्रेमाख्यान है। पद्मावत की चर्चा करते हुए प्रायः उसे सूफी प्रेमाख्यानकों की परंपरा में रख कर देखा जाता है। न केवल उसके संदर्भ में भारत की अपनी परंपरा में उपलब्ध प्रेम कथाओं को नहीं लिया जाता, उसे विशुद्धतः मसनवी शैली में रची गई प्रेम कथाओं में पाई जाने वाली काव्य रूढ़ियों और कथानक रूढ़ियों में ही बांध दिया जाता है। देखने वाली बात यहाँ यह है कि पद्मावत मसनवी शैली की प्रेम कथाओं में उपलब्ध रूढ़ियों और कथानक रूढ़ियों के पालन के साथ साथ अपना संबंध भारतीय प्रेम परंपरा की उन प्रेम कथाओं से भी जोड़ता है जो यहाँ की अपनी चीज है, और उनमें भी वे तमाम काव्य रूढ़ियां और कथानक रूढ़ियां मिलती हैं जो मसनवी शैली के प्रेम कथाओं में हैं। ऐसा करने पर पद्मावत को समझने का एक प्रशस्त आधार मिलेगा और वह महज सूफी मुसलमानों द्वारा रचित प्रेम कथाओं के दायरे के बाहर भी परखा जा सकेगा।